बताओ, एक बादल आपने बोला है कि 4.5 लाख 8 वर्ग में दबेंगे, 4.5 लाख 8 मतलब 8 के अलावा सब वर्ग में दबेंगे, 4.5 लाख को 2017-18 में
8 कम 4.5 लाख
को ये 2017-18 में होंगे, तो वर्ग में तो 2036 को संपूर्ण विनाश बताया गया, युद्ध है तो घर पर जमना 2036 में, ये कोई समझ में नहीं आ रहा।
बर्फ जाम होगी देह अभिमानियों के लिए या आत्मा अभिमानियों के लिए? और 8 जो है वो देह अभिमान में रहेंगे अंत तक, देह अभिमानी उनका खलास हो जाएगा।
नहीं, ये टाइम की बात है, 2017-18
चलो टाइम वो 18 हो या 36 हो, लेकिन जो 8 होंगे वो कोई प्रकृति की मार सहन नहीं करेंगे, न प्रकृति की मार सहन करेंगे न धर्मराज सजाएं अनुभव करेंगे।
भस्म दबने का समय कौन सा, संपूर्ण नाश होगा जब एटॉमिक एनर्जी होगी तभी होगा।
भारतवर्ष के 3 तट हैं समुद्री, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट और एक हिंद महासागर जिसे कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक दक्षिण वो हिंद महासागर, और तीनों में कोई बम्बार्डमेंट कर दे तो समंदर का पानी खोलेगा या नहीं खोलेगा?
खोलेगा,
वो तो जोर से खोलेगा, तो मूसलाधार बरसात कहाँ ज्यादा होगी? पहले तो भारत में ही होगी, जब लगातार मूसलाधार बरसात लंबी बरसात हो जाए तो मौसम कैसा हो जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है। अभी भी खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी के बाद बरसात हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। अभी भी जब इतना असर होता है, जब 2-3 दिन 4 दिन ज्यादा बरसात होती है और वहां लगातार बरसात अगर हो गई तो मौसम सारा एकदम ठंडा, टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिरेगा तो बर्फ भी गिर सकती है, नहीं गिर सकती, गिर सकती है, बर्फ में जब को फिर यंत्रणा सहनी होगी उनको सहन करने को, वो तो एक समय की बात, एक देशीय बात नहीं है कि 1936 में ही जाकर के सारी दुनिया में बर्फ छा जाएगी।
हाँ,
बम्बार्डमेंट तो धीरे धीरे होता रहेगा, एक साथ होना ही जरूरी है, है? जब दीपावली होती है, यादगार दीपावली मनाई जाती है या दशहरा मनाया जाता है, तो रावण को जब जलाते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, हैं? बम्बियां छोड़ते हैं ना, किसकी यादगार में छोड़ते हैं? जब रावण जला था तो बम्बियां छोड़ी, पटाखे छोड़े, यादगार किसकी है? सारी दुनिया में से रावण राज्य के मरने की यादगार है ना। अभी अमेरिका को ज्यादा देहवान है या मुसलमानों को ज्यादा देहवान है? अमेरिका को ज्यादा देहवान है, सब छोटे छोटे देशों को हप करता जा रहा है, अपने कंट्रोल में करता जा रहा है। मुसलमानों के लिए तो बोला है ये पहले मरेंगे, मुसलमानों में खास जो इस्लामी है उनके लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म ही इस सृष्टि पर विधर्मियों के बीच में पहले पहले आया, जो पहले पहले आया वो ही पहले 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 मरेगा। इस्लामी पहले मरेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम विकार वाले हैं वो पहले नहीं जा पाएंगे। क्या क्रोध विकार वालों में ज्यादा अहंकार होता है या काम विकार वालों में ज्यादा अहंकार होता है? अहंकार देह अहंकार अहंकार की स्टेज में ज्यादा कौन रहे अभी मुसलमान है दुनिया में इस्लामी भी है और क्रिश्चियंस भी है ज्यादा अहंकार किसमें भरा हुआ है जो एटम बम बनाए बैठे उन्हीं में तो ज्यादा अहंकार भगवान अहंकारियों को माफ नहीं करता पहला दूसरा तीसरा चौथा विकार जिनमें है उनको फिर भी माफ करता है और काम विकार को बहुत नीचे दृष्टि कामियों को बहुत नीचे दृष्टि से नहीं देखता भगवान तो जानता है जितनी भी गृहस्थी है वो सब गृहस्थी है सब काम विकार में गिरे हुए उनको नीचे नहीं देखता क्या देखता है कि ये भी ऊंच थे संग के रंग में आकर नीचे गिर गए
देवान होता उनको समान
हाँ तो दुनिया में सबसे पहले इस्लामी जाएंगे
2008 में
बाबा के बच्चे सब माता
हूँ
कौन जाएंगे कहा है ना बाबा के बच्चे बने रूह बने रूह बन गए बाबा के बच्चे माना रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं या देह अभिमानियों को पढ़ाते हैं 2008 में सब रूह बन जाएंगे नहीं बनेंगे तो कैसे पहुँच जाएंगे
बताया
है
कि 2007 के बाद में
2008 में बताया कहीं बताया किसी सीढ़ी में किसी मुरली में किसी लिटरेचर में किसी किसी लेटर में किसी ईमेल में कहीं ऐसी ऐसी बात बताई कि 2008 में सब माउंट आबू पहुंच जाएंगे
बताया
अरे रूह बनने की बात है जो रूह है रूहानी स्टेज में है सदा काल रूहानी स्टेज में है वही रूहानी दुनिया में रहेगा या दूसरे कोई रहेंगे परमधामी स्टेज की अनुभूति होने लगे ये दुनिया से जैसे खाक उड़ पड़ी इसे कुछ लेना देना हमको है नहीं पाना था सो पा लिया आप इस दुनिया से कुछ नहीं ये सब मरे पड़े इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो साहब भस्म हुआ पड़ा भस्म बन गई मेरी साधु संत महात्मा होते हैं शंकर जी होते हैं तो उनको क्या रमाई हुई दिखाते हैं पूरे शरीर क्या रमाई हुई है भस्म रमाई इसका क्या मतलब हुआ आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी ये सारी दुनिया भस्म हो चुकी भस्म हुई पड़ी है आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगे मल्टी मिलियनायर्स और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं और कल ये सब खत्म हो गया ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं ये शरीर खलास हो जाएगा तब खत्म होंगे शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं ऐसी स्टेज लगातार बन गई उस स्टेज को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या कोई इच्छा नहीं कुछ लेना देना नहीं पुरुषार्थ के लिए दो रोटी मिल रही है तो भी ठीक अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक अंडरवुड मिल जाए तो भी ठीक घास फूस का वाहन मिल जाए तो भी ठीक महल मिल जाए तो भी ठीक और वो भी ना मिले
तो भी ठीक
आकाश ओढ़नी और जमीन जिसोना तो भी ठीक एक रस स्थिति बन जाए देखने वाले भी कहे किसकी एक रस स्थिति बनी हुई है और अपनी आत्मा को भी यह अनुभव हो कि एक रस स्थिति बन गई
बाबा कृष्ण का जन्म होगा
तो अन्य आत्माएं भी तो देवी आत्माएं जन्म लेंगी ना, अन्य को देवी आत्माएं भी तो जन्म लेंगी ना, देवी देवता जन्म लेंगे कृष्ण के साथ साथ।
और क्या पीपल के पत्ते पर अकेला कृष्ण आएगा क्या?
तो उनको तो फिर बर्थ में नहीं करना पड़ेगा,
शास्त्रों में बात दिखा। आप किस कृष्ण को याद कर रहे हैं?
अभी जो 18 में जो जन्म लेगा।
आप किस कृष्ण को, देह वाले कृष्ण को याद कर रहे हैं या जो कृष्ण शास्त्रों में जिसका गायन है उस कृष्ण को याद कर रहे हैं? आपकी आत्मा कौन से कृष्ण को याद कर रहे
हैं? हम तो बाबा को ही याद करते हैं, अभी कृष्ण को याद ही नहीं कर रहे।
अच्छी, आप याद, आप राधा को याद करते
हो? बाबा को याद करते
हैं। आप बाबा को याद करते हैं? फिर राधा कृष्ण के बारे में क्यों पूछे?
नहीं, इसलिए कि जब बर्फ में दबने वाली बात जो आई है, बर्फ में जो दबेंगे उनकी जो बात आई, तो जो कृष्ण के साथ में जो जन्म लेंगे उनको तो उसमें नहीं दबना पड़ेगा, क्योंकि वो तो साथ ही 18 में जन्म लेती चली
जाएगी, प्रकृति कामसी होगी क्या? लेकिन
उस समय तो
सवाल ये है, आपकी बुद्धि में कौन से कृष्ण के पीछे आपकी बुद्धि जा रही है? 63 जन्म आपकी बुद्धि वास्तव में कौन से कृष्ण के पीछे लगी रही? सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण के पीछे बुद्धि लगी रही या संगम युग वाले कृष्ण के पीछे बुद्धि लगी रही? 63 जन्म का आपका बुद्धि का जो हिसाब किताब है वो कौन से कृष्ण के साथ लगा रहा?
अभी तो सतयुग में जो पहला जन्म जिसका होगा उसके लिए,
शरीर के साथ जो जन्म लेगा
शरीर के साथ,
उसके साथ आपकी बुद्धि लगी हुई?
नहीं, वो जब देवता जन्म लेंगे तो वो भी वो पहले जन्म लेगा, ऐसे कहते हैं।
हमारा बुद्धि संगम की कृष्ण के साथ नहीं लगी हुई है, बुद्धि किसके पीछे लगी हुई है?
तो संगम का कृष्ण तो फिर नारायण ही बन जाएंगे ना, फिर
नारायण बन जाएगा वो नेक्स्ट टू गॉड होगा, या सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड होगा?
संगम जो नारायण बने लोग,
बुद्धि कहाँ जानी चाहिए?
नारायण में जानी चाहिए, नारायण में जानी चाहिए।
बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये चारों ही बातें बोली है, तो जिस कृष्ण के लिए बोला नेक्स्ट टू गॉड वो कौन सा कृष्ण है? संगम युग कृष्ण, बच्चे के रूप में पैदा होने वाला कृष्ण होगा क्या?
तो वो हम
कौन सा कृष्ण आना चाहिए? संगम युग कृष्ण आना चाहिए।
तो बाबा ये हम आंखों से देख लेंगे क्या? ये नारायण बन गए और उनके सन्मुख हम हैं।
इन आंखों से कोई चीज देखी जाती है तभी माना जाता है। ज्योति बिंदु शिव को इन आंखों से देख रहे हैं आप?
नहीं, वो तो अनुभव कर रहे हैं।
तो उसको दूसरी आत्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते? जब एक आत्मा को अनुभव कर सकते हैं तो दूसरी तीसरी चौथी और 16,000 आत्माओं को अनुभव नहीं कर सकते?
नहीं, तो उनके समक्ष हम होंगे ना, उनके साथ में।
अभी आप शिव बाबा के समक्ष हैं या नहीं है इस दुनिया?
वो तो निराकार है, लेकिन ये तो साकार में होंगे ना,
तो निराकारी स्टेज बन जाएगी उनकी। जो निराकारी स्टेज वाले होंगे वो ही पहचान पाएंगे, रूह ही रूह को पहचानेगी, देह अभिमानी नहीं पहचान पाएंगे, अभी भी नहीं पहचान पा रहे। अभी सब जितने भी बीकेज हैं उनकी बुद्धि कौन से कृष्ण का इंतजार कर रही है? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा बच्चे के रूप में, देह के रूप में, उस कृष्ण के साथ बुद्धि लगेगी। एडवांस पार्टी में भी बहुत से हैं, ढेर सारे, उनकी बुद्धि उस कृष्ण के साथ नहीं लग रही है जिस कृष्ण को नेक्स्ट गॉड का है।
एडवांस
में क्या
क्यों है?
क्या एडवांस में क्या है? एडवांस में बहुत से लोगों ने ये नहीं समझ लिया कि 18 में जो कृष्ण पैदा होगा वो बच्चे के रूप में पैदा होगा?
हम तो बाबा यही समझ रहे हैं,
साकार बच्चे के रूप में पैदा होगा। नहीं, बहुत दूर समझ रखा है।
बहुत ज्यादा
ओह। हम तो ज्ञान छोड़ देंगे। अरे वो कृष्ण खिलाने को नहीं मिला तो क्या फायदा है? सारा सब क्या नाश हो गया
है।
यही तो सब समझ रहे हैं बाबा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं।
अच्छा संगम भी कृष्ण होगा तो वो नारायण नहीं बनेगा, राजगद्दी उसको नहीं मिलेगी। बहुत से तो ये बात सुनकर के हाँ सत्युग में क्या नंगे रहेंगे।
पट्टी नहीं करते खाली डायरेक्ट सुनते ना, उनको अचंभा होता है।
अरे वहाँ भाई बहन बन के पैदा होंगे, साथ साथ पैदा होंगे और साथ साथ शादी करेंगे, ये चीज ये परीक्षा हो रही है। कौन से कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है? कौन से कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है? देवता में बुद्धि लगी हुई है या भगवान कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है? ये तो कह रहे हैं बच्चे के रूप में होगा। और जन्म का मतलब क्या है?
बच्चा
जन्म का मतलब क्या है? जन्म माने प्रत्यक्षता, पेट के अंदर है तो अप्रत्यक्ष है, पता नहीं बच्चा है कि बच्ची है कि क्या है, मरा हुआ पैदा होगा कि जिंदा पैदा होगा कुछ पता नहीं, प्रत्यक्ष हुआ बाहर आया
माने सबको जानकारी,
जन्म हुआ सबको जानकारी हो जाए।
यही है, यही
जैसे
भी जैसे वाले मान बाबा राजशील तो उसी प्रश्न का होगा ना।
माताएं 36 माताएं तो ये बात सुन करके बहुत सी माताएं कह रहे
हैं बाबा 2036 में राजशील तो वही प्रश्न का होगा ना जो 18 में जन्म लेगा।
जो 18 में जन्म लेगा उसी को राज्य करेगा या नहीं करेगा?
नहीं करेगा, पर 2036 में
कृष्ण से नारायण बनेगा या नहीं बनेगा?
ना कृष्ण से नारायण पर वो बनेगा।
कौन सा नारायण बनेगा? पहले नर नारायण बनेगा कि पहले सत्यवी नारायण बनेगा?
नर नारायण तो पहले बनेगा, पर राज तिलक किसको होगा?
राज तिलक जो है एक होता है स्थूल में और एक होता है सूक्ष्म में। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देकर उनकी सारी दुनिया जान जाएगी कि ये असली नारायण है जिसकी सत्यनारायण की कथा होती है, ये असली कृष्ण है जिसके साथ कंस का युद्ध दिखाया गया, जिसके पीछे कंस पड़ा हुआ था।
तो मुरली में कई बार बताया है कि पूरा विश्व जान जाएगा,
तो कौन सी कृष्ण को जान जाएगा? अंग्रेज लोग कहते हैं लॉर्ड कृष्ण, वो लॉर्ड कृष्ण कौन से कृष्ण को कहते हैं? लॉर्ड कृष्ण
सत्यु
वाले, वहाँ क्रिश्चियंस होंगे, वहाँ तो क्रिश्चियंस होंगे ही नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियंस भी घुसे हुए नहीं
है,
क्रिश्चियन धर्म की भी रूप आत्माएं भी आधारभूत आत्माएं भी।
बाबा चीज को एक बार क्लियर कर बताओ कि हम जो प्रश्न को याद कर रहे हैं,
कौन से प्रश्न को आप याद करते हैं?
प्रश्न याद आता है
तो इसका मतलब आधी आधी बुद्धि बेसिक डरी हुई
बेसिक
अपने सामने तो बैठे नहीं, वो तो बैठे हुए हैं लेकिन जो
लेकिन हमें नारायण चाहेंगे
तो वो पहले बालक तो नहीं बनेंगे ना, वो नारायण लक्ष्मी नारायण रूप में ही बड़े होंगे ना।
शास्त्रों में जिस बालकृष्ण की लीलाएं दिखाई है वो प्रैक्टिकल में साकार में छोटा बच्चा था या सिर्फ समझने की बात है?
वो तो अभिज्ञान से अपन समझते हैं कि समझ की बात है।
तो 63 जन्म कौन से कृष्ण को याद किया?
वो उस कृष्ण को याद किया।
किस कृष्ण को? सतयुग पैदा हुआ जो सतयुग पैदा हुआ।
हाँ सतयुग में पैदा हुआ
उसको तो याद ही नहीं किया, उसको तो जानते ही नहीं, उसकी हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। सतयुग में जन्म लेगा, उसका जन्म हुआ सतयुग में पहला नारायण, उसकी पूजा थोड़ी होती है।
ये तो हम अभी समझते हैं,
पूजा किसकी
होती है?
संगमुखी नारायण की पूजा होती है, संगमुखी कृष्ण की पूजा होती है।
छत्तीस की बात जन्म
है,
छत्तीस की बात श्री कृष्ण जन्म
क्यों के बाद क्यों होगा? सत्यु का सत्यु बाद कहा जाएगा, 12.5 वर्ष के बाद
नहीं, छत्तीस के बाद,
छत्तीस के बाद,
छत्तीस के बाद। सीधी सी बात है, सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो जब सारी दुनिया खलास होगी तो सारी सृष्टि पर क्या हो जाएगा? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। थोड़ा सा तबक्का रहेगा कहीं जहाँ प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा।
अब हम तो बचेंगे ना।
आप कौन से कृष्ण को याद करते हैं?
हम तो कृष्ण की बात।
आप मरने वाले कृष्ण को याद करते हैं या अमर कृष्ण को याद करते हैं?
अमर कृष्ण को। केवल एक बाबा को बुद्धि में बसा रखा है और किसी को भी बसा रखा है, लेकिन ये चर्चाएं होती हैं तब ये पूछा।
लेकिन लगा हुआ
है लेकिन, बाकी ना बाबा को याद
बाबा ने तो बता दी, लेकिन परंतु ये करना ही।
एक सीधी बात यह है, पहले संगम भी कृष्ण दुनिया में प्रत्यक्ष होगा या पहले सतयुग का प्रश्न बच्चे के रूप में जो जन्म लेगा वो प्रत्यक्ष होगा संसार में?
संगम योग
तो वो प्रत्यक्ष हो गया क्या पहले?
नहीं,
वो ये भी प्रत्यक्ष नहीं।
उसका मतलब संधारा में प्रकट हो
तो बाबा वो प्रत्यक्ष होगा, वो हम देख लेंगे ना।
अभी नहीं देख रहे?
नहीं अभी तो बाबा के रूप में ही देख, हम शंकर के रूप में देख रहे हैं अभी तो, उसके आगे हम कुछ ही नहीं समझते।
यहाँ बीज रूप आत्माओं में जो चंद्रवंशी बीज रूप है वो भी कृष्ण को पहचानेंगे। जो चंद्रवंशी बीज है उनकी बुद्धि अभी कहां धरी हुई है? ब्रह्मा में रखी हुई है या संगमुखी कृष्ण में रखी हुई? उनकी बुद्धि ब्रह्मा में रखी हुई है, और ब्रह्मा को गीता को भगवान समझते हैं। पर जब वो ही ब्रह्मा को, वो ही गीता का भगवान ब्रह्मा को समझते हैं, तो उनके नीचे जितने भी धर्म वाले हैं वो सब क्या समझेंगे? उसी को समझेंगे।
अब 98 में जब कृष्ण प्रकट हो गए, 2018 में होंगे,
2018 में क्या
कृष्ण होंगे? संगम युग, संगम युग कृष्ण है, 98 में प्रकट हो गए।
अभी प्रकट नहीं है आपके?
प्रकट हो गए जब तो बोल रहे।
अभी आपके सामने प्रकट है कि नहीं है?
प्रकट है।
अभी प्रकट है फिर होंगे क्यों?
18 के
सामने
कौन प्रकट?
माने दुनिया वाले जो अंग्रेज लोग हैं
वो 18 में
वो इस बात को स्वीकार करेंगे।
2018
उनके शास्त्रों में जिस लाड कृष्ण की बात आई है, उस लाड कृष्ण को
हमने
जो शास्त्रों में लिखा समझा है जाना है, वो कौन से कृष्ण को जाना है? सत्यों के कृष्ण की उनके शास्त्रों में हिस्ट्री है या संगम के कृष्ण की उनके शास्त्रों में हिस्ट्री है? संगम के कृष्ण की शास्त्रों में उनके यहाँ हिस्ट्री है। और
बाबा हम तो कुछ नहीं जानते, आप अपने पास रखना
है
बस, आपके साथ ही रहेंगे।
आपको चिंता क्यों हो रही है? 18 में पैदा होगा कि होगा कि नहीं होगा कि कहाँ होगा,
सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाबा जाने नहीं, बाबा ये कहे कि बस मैं तुमको साथ ही रखूंगा।
ये आदम और हवा
है,
आदम और हवा
है,
एडम और ईव, ये पहले तो हम ये मानते थे कि जो आदि में आदि प्रजाति था और जो माता थी उनको मानते थे, लेकिन अभी डिस्कशन में
माता कौन थी?
गीता माता।
गीता, गीता माता भी तो दो बता दी,
उनमें से कोई
एक सच्ची गीता एक झूठी गीता,
उनमें से कोई भी एक,
कोई भी एक
अभी अभी डिस्कशन सुना कि राम और कृष्ण यही आदम और हवा है, एडम और ईव,
तो समझने की बात है, प्रवेश करके ब्रह्मा की सोच जो है वो प्रवेश करके ही वह हवा है।
बाबा जगदम्बा तो गीता माता है, तो फिर ये योगिनी योगिनी कौन है ये समझ नहीं आता।
गीता माता जो है वो रुद्रमाला के मणके जो 108 है उनमें सबसे ऊपर कौन से वंश है? सूर्य वंश, चंद्रवंश, जो दो गीता माता जिसको तुमने बताया जहाँ जगदम्बा है और जगत पिता है उनमें सूर्यवंश का मुखिया कौन है और चंद्रवंश का मुखिया कौन है, इनको बताने दो ना, मुझे हुए हैं बहुत।
तो वहाँ तो वो सरस्वती जो बताया था ना उन राधे,
सरस्वती क्या बताया,
राधा वो बनेगी,
राधा बनेगी
और ये जगदम्बा है, जगदम्बा का क्या पार्ट है, वो माँ काली बनेगी, ये
माँ काली बनेगी,
वो योगिनी कौन है ये सब।
अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो, रुद्रमाला में सबसे ऊपर कौन से वंश के बढ़ के हैं, कौन से वंश के ग्रुप हैं सबसे ऊपर?
पहले तो ब्रह्मा सरस्वती बताया था,
हम वंश पूछ रहे हैं, हम वंश पूछ रहे हैं, जो रुद्रमाला में सबसे ऊपर जो ग्रुप हैं, दो ग्रुप होंगे ना, उन दो ग्रुप में वो दो ग्रुप का वंश कौन सा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, वो तो सूर्यवंश का मुखिया कौन है, अच्छा चलो राम या शंकर जो भी नेक्स्ट रिकॉर्ड जो भी हो वो तो हुआ सूर्यवंश का मुखिया, फिर चंद्रवंश का मुखिया कौन है, कहाँ कहाँ प्रश्न प्रश्न अभी है भी है कहीं,
ब्रह्मा है ना,
अरे है कहीं ब्रह्मा
अभी तो नहीं,
अभी जो मौजूद है उनमें बताओ ना, जगदम्बा
तो जगदम्बा सूर्यवंश में नहीं आई,
अरे जब महाकाली दिखाई जाती है तो महाकाली के मस्तक पे क्या दिखाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं,
चंद्रमा शंकर के भी दिखाते हैं,
तो दिखाते हैं, लेकिन जब नारायण बन जाता है तो दिखाते हैं, वो तो हट जाएगा, वो तो ब्रह्मा से क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा, फिर तो चंद्रवंश का हेड कौन हुआ, चंद्रवंशी जो ग्रुप है उसका मुखिया कौन है, जगदम्बा, और सूर्यवंशी ग्रुप का हेड कौन है, जगत पिता, तो 12 जो मणके हैं चंद्रवंश के उनमें मुख्य मणका है जगदम्बा, उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश होकर पार्ट बजाएगी है, जगदम्बा में कौन सी आत्मा प्रवेश होकर पार्ट बजाएगी अंदर, ब्रह्मा बाबा की या सरस्वती की, माता जी ने सरस्वती का नाम बीच में रख दिया,
ब्रह्मा की तो वो सरस्वती भी उनके तब से पार्ट बजाएगी और
ये कहां कहां?
ब्रह्मा बाबा भी बजाएगी,
ये तो आपने अनुमान लगा लिया कि सरस्वती भी बजाएगी,
तो अभी जन्म नहीं लिया तो कहीं
सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है क्या,
नहीं
सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है क्या, वो तो है ही नहीं जगदम्बा, वो तो टाइटल मिल गया उनको, तो जगदम्बा वास्तव में कौन है, कौन है ब्रह्मा,
ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा लेखराज थे,
माँ दादा लेखराज थे, तो जगदम्बा थे कि नहीं,
जगदम्बा
ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ, इसलिए तो उन्होंने बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में ये दाढ़ी मूंछ वाले को कैसे रखा जाए, इसलिए ये ओम राधे सरस्वती निमित्त बनी हुई जगदम्बा, तो वास्तव में जगदम्बा कौन है उस समय, ब्रह्मा बाबा, वही ब्रह्मा बाबा की सोल शरीर छोड़ देती है, तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जिस नारी चोले में स्त्री चोले में प्रवेश करे एडवांस पार्टी में जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है, उसमें प्रवेश कर जाती है, अंत तक उसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगी, यहाँ बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करेगी और वहां स्थूल पेट में प्रवेश करके पढ़
लेगी। बाबा ये लौकिक पढ़ाई के बारे में जो बताया भाई डोगली पढ़ाई है,
आपकी इस बात का जवाब हो गया
क्या? ओम राधे मम्मा क्या बनेगी?
राधे मम्मा तो राधे ही बनेगी ना,
सचिव में बनेगी।
हाँ
बाबा ये जो लौकिक पढ़ाई को बताया बाबा ने मुगी में कि ये डोगली पढ़ाई है, तो अभी के जो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे, जब भी तो इसके लिए पढ़ाई पढ़ सकेंगे,
वो घर में नहीं पढ़ा सकते। जरूरी है कि आज के जो स्कूल में जो बच्चे जो बदतमीजी कर रहे हैं वो बदतमीजी उनको सिखाना ही सिखाना है,
तो घर में पढ़ाना ठीक है, बाहर
नहीं पढ़ा सकते।
क्यों
पढ़ा सकते? उनको अंग्रेजी सिखाओ, हिंदी सिखाओ, हिस्ट्री जोग्राफी सिखाओ।
नहीं कोई किसी के माँ बाप पढ़े हुए नहीं हो तो वो पढ़ाए
पढ़े ना, संगी साथी है कोई ना, गीता पाठशाला में तो बहुत लोग होते हैं, कुछ ऐसा प्रबंध कर दो एक घंटे का, उनके बच्चे भी पढ़े हमारे बच्चे भी पढ़े, करने से ही सब कुछ होगा, अपने आप थोड़ा ही होगा।
एक महीने पहले सेंटर की
बीपीआई
सेंटर की ये पर्चियां दे रहे थे, जो सेवा देते थे ना, जो सेवा देते थे मंत्री लेते थे ना, बेसिक में
पूरी
सेवा देते थे, उसकी ये पर्चियां लेके लेके आई, ये स्लिप देके आई।
पैसा दो,
पैसा देने की मतलब जो दी थी ना उसकी रसीदें, तो मैंने तो इनको धूम में भट्टी की थी, उसके बाद मैंने दिया नहीं। अब इसमें जुलाई,
अरे आजकल इनकम टैक्स पूछ रहा है उनसे, ये इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो प्रूफ दे रहे हैं,
तो
प्रूफ लिखवा लिखवा करके दे रहे हैं, साइन करा करा के, ये पैसा इनसे आया, ये पैसा इनसे आया, ये पैसा इनसे आया। और बाबा ने बताया तुम बच्चे अपनी संस्था को रजिस्टर्ड थोड़ी करावेंगे, तुम्हारी तो फैमिली है, फैमिली कोई रजिस्टर्ड कराई जाती है क्या? तो पहले तो कराते कराते कर गए, श्रीमद के बदलाव काम हुआ है या श्रीमद के अनुकूल हुआ? श्रीमद के बदलाव काम हो गया। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया, तो खूब पैसा इकट्ठा किया, जितना पैसा आता जाए सरकार छोड़ती जाएगी, चलो संस्था का पैसा, अब नियम कानून दूसरा बना दिया उन्होंने, हिसाब भी देना पड़ेगा एक एक पैसे का, तो अब वो हिसाब देने के लिए भीख मांग रहे हैं।
बाबा मैंने सितंबर में तो दिया ही नहीं, जून में भर्ती करने के बाद फिर वो जुलाई में आई, तो जबरदस्ती कहने की हाँ आपको तो देना पड़ेगा, चलो जुलाई में दे दिया, सितंबर अगस्त में मैंने दिया ही नहीं, उसकी भी पर्ची काट दी,
नहीं दिया तो भी काट दी।
हाँ सितंबर में तो मैंने दिया ही
नहीं, वो
काली रसीदें बना के
मचा हुआ है अंदर, अब उन्हें याद आ रही है कि एडवांस पार्टी वाले जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं।
बाबा उनको संदेश में जितने भी सेंटर के लोग हैं उनको घर घर जाके संदेश देने लगी बाबा के पास।
ये पहले पहले बोलती थी कि उनको अलग कर दो, निकाल दो, आने मत दो, अभी कहते हैं तुम नए नए निकालो।
हाँ यही कहा,
तुम नए नए निकालो,
आप हमारे
उनको पुरानों को खींच ले जाने दो,
कहती
है हमारे बच्चों को आप नहीं कह रहे हो, हमने कहा आत्माएं
कोई नहीं पुरानी होती है क्या? आत्माएं तो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो कहती
है
आप हमारे बच्चों को मत छेड़ो,
ये
बच्चे
हैं
भगवान के बच्चे,
आप
भगवान के बच्चे
नहीं रहे,
आप ये कहते हैं कि आपके बच्चे थोड़े भगवान के बच्चे, तो ये कहती है भोग नहीं लगा रहे हो क्या? मैंने कहा बाबा ने तो ब्रह्म का चित्र ही रखने को मना किया है, तो भोग किसको लगाना,
प्रकृति जो पूर्ण तामसी बनती है तब संपूर्ण विनाश होता है, संपूर्ण विनाश तो 2036 के आसपास होगा, 36-37 में, तो इसका मतलब प्रकृति यानी जगदम्बा 2036 तक पावन नहीं बनेगी।
अगर जगदम्बा ही संपूर्ण पावन बन जाए तो जगदम्बा को भी नारी से क्या बनना चाहिए, लक्ष्य क्या है जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना। तो संपूर्ण नारी से संपूर्ण लक्ष्मी बनती है क्या? है फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा को लक्ष्य प्राप्त हुआ? ब्रह्मा को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। असली जगदम्बा तो ब्रह्मा है। सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया?
ब्रह्मा
ने। एडवांस पार्टी में जगदम्बा का पार्ट है वो सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, या बेसिक नॉलेज में जो दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा की आत्मा है वो सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली है? सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज। तो जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया वही माँ है, बड़ी माँ। तन जो है वो दूसरा है। तो प्योरिटी हम बच्चे जो है तन को देवे हैं या मन बुद्धि रूपी आत्मा को देवे?
मन बुद्धि
रूपी आत्मा को प्योरिटी का।
तो बाबा ये 108 की माला का अंतिम मणका, 108 की माला में भी है
अंतिम मणका।
चंद्रवंशियों का हेड है जो 108 की माला बनती है उसमें
अंतिम मणका।
हाँ जगदम्बा
नहीं होगा
तो 2036 तक फ्री है।
2036 की बात छोड़ो, 1936 की बात उठाओ। वहाँ कौन सी आत्मा को सब बच्चों ने दबोच लिया और प्रजापिता को नहीं दबोच पाया?
ब्रह्मा दादा ले
ब्रह्मा को दबोच लिया। तो सबसे कमजोर हुआ नहीं, सबके प्रभाव में आ गया, हर बच्चे के प्रभाव में माता आ जाती।
तभी तो एक गीता का भगवान का ठेका उससे नाम सुन लिया
है।
तभी से एक गीता का भगवान श्री कृष्ण ने ठेका वहीं से सुन लिया।
वहीं से अगर सूटिंग होगी आठवां 108वां मणका कौन सा हुआ? अरे लास्ट मणका कौन सा हुआ? ये तो माला है तो माला में एक फर्स्ट मणका है और एक लास्ट मणका है।
तो सूर्यवंशी तो जो
है
सूर्यवंशी 4.5 लाख कंचन काया बनेंगे, साथी बनेंगे आत्मा। लेकिन ये 108वां मणका है फिर भी नहीं बन रहा है, तो समझ में नहीं आई।
ये क्या बात है? लास्ट में तो सभी सूर्यवंशी बने, लास्ट में बनना है या फर्स्ट में बनना है?
जैसे 108 तो पहले ही बन जाएगी।
तो हम ये जो पूछ रहे हैं कि एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी।
तो ये तो अभी हो जाएगा।
फर्स्ट ग्रुप कोई होगा कि नहीं?
हाँ वो सूर्यवंशी को।
तो असली सूर्यवंशी कौन सा हुआ? जो असली सूर्यवंशी होगा और जो लास्ट में सूर्यवंशी बनेगा तो उसमें ज्यादा पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? मेहनत ज्यादा किसको महसूस होगी और मोहब्बत ज्यादा किसको महसूस होगी?
असली सूर्यवंशी
जो फर्स्ट है उसको, वो असली है और जो लास्ट है वो नकली है। ऐसे याद हर मूर्तों में तो सत्युग में फर्स्ट नारायण बनेगा और जो संगम युग में फर्स्ट नारायण बनेगा, अंतर हो जाएगा ना
बाबा। जगदम्बा जब महाकाली बनेगी तो
बनी थी कि बनेगी या बन चुकी है?
नहीं बन चुकी कहाँ, वो तो पार्ट तो अब खुलेगा ना उसका
है?
तो अभी वो जब माउंट आबू जाएगी तो ज्ञान के द्वारा ही उनको समझाएगी कि कोई हिंसक कार्य करे।
जगदम्बा समझा करके बाप का बनाएगी या निश्चय बुद्धि बनाएगी?
ना यही मैं पूछ रही हूँ, बाप का बनाएगी ना।
जो महाकाली का पार्ट है वो असुरों को खलास करने का है या असुरों को देवता बनाने का है?
खलास करने का है। तो वो ज्ञानी सुनाएगी, जो नहीं समझेंगे वो निकल जाएंगे, यही होगा।
ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर अभी असुर बैठे हुए हैं कि देवता बैठे हुए हैं?
असुर भी हैं।
असुर बैठे हुए हैं तो उनका खलास हो जाए, इतने सारे स्वर्ग में चले जाएंगे क्या?
नहीं पर तब से खत्म यूं मारकाट थोड़ी करेगी, ज्ञान से ही समझाएगी ना। ये मेरे कहने का मतलब है।
अब क्या समझ रहे?
ज्ञान से समझेंगे, ज्ञान से नहीं समझेंगे तो निकल जाएंगे। और
शिव तो है कल्याणकारी
है,
शंकर विनाशकारी
माना कहा जाता है, लेकिन शंकर विनाश थोड़ी करता है।
विनाश तो शुरू हो गया सर,
बोला है संकट विनाश करता है क्या? संकट तो विनाश थोड़ी करता है।
अब साहब जो जो विनाश ही हो रहा
है निमित्त बनती है
ना, साहब संकट विनाश नहीं करता जो वैसे विनाश मारकाट का थोड़े होता है, विनाश बुद्धि का
विनाश का विनाश न हो।
हाँ बुद्धि का विनाश,
लेकिन बुद्धि को हिला दिया
हाँ
तो विनाश हुआ ही नहीं,
तो विनाश तो शंकर ही कर रहे हैं ना।
बुद्धि को हिला दिया,
बुद्धि को
क्या बुद्धि बना दिया?
नहीं नहीं
वो ज्ञान के द्वारा
अनिश्चय बुद्धि बना दिया, बाप बाप है ही नहीं,
वो तो ब्रह्मा बाबा ने बनाया ना,
वो तो ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करेगा, जिसमें प्रवेश करेगा उसको नहीं बनाएगा। जब ब्रह्मा की सोल तमो प्रधान बनेगी या जगदम्बा की सोल तमो प्रधान बनेगी तो वो स्थापना करेगी कि विनाश करेगी? विनाश करेगी। अच्छा वही आत्मा विनाश करेगी तो और जो दूसरे दूसरे धर्म के जो बीज है वो विनाश का काम ज्यादा करेंगे, स्थापना का काम करेंगे, सारा विनाश का काम करेंगे।
बाबा जब ब्रह्मा ने ज्ञान दिया ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने दो, एक तो
मुखवंशावली को
मुखवंशावली। तो साहब अभी जो पाठ चल रहा है अभी तो वो पाठ तो वो चल रहा है अभी जो कुकवंशावली है ना उनका विनाश का काम हो रहा है।
जो कुकवंशावली है वो कोक को देखेंगे,
उनका विनाश हो रहा है।
जो कुकवंशावली है उनका विनाश,
ज्ञान हमको मिल रहा है तो हम तो उससे तो हट गए ना, उस विनाश से तो हट गए ना,
विनाश से हट गए।
हाँ
कैसे?
जो मुखवंशावली में थे पहले हम लोग, अब मुखवंशावली में हो गए कि नहीं?
नहीं वो तो बेसिक नॉलेज की बात है।
तभी तो
बेसिक नॉलेज में कुकवंशावली भी है, मुखवंशावली भी है, एडवांस नॉलेज में भी दोनों है। कुकवंशावली वो है जो देहधारी को पकड़ते हैं क्या, और मुखवंशावली है जो मुख को पकड़ते हैं, मुख से जो बात निकली उसको वही ब्रह्म वाक्य में जमा करो, हम और किसी को नहीं मानेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और कोई जगदम्बा की मत पहचान पड़े तो फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई हुआ। एक से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, तो मनुष्य गुरुओं में सबसे पहला गुरु कौन सा हुआ? वो तो गए खत्म हो गए। अब इस दुनिया में पहला गुरु कौन?
तो सब
सबसे बड़ा गुरु है।
सब ये बात है, कृष्ण ने बोला कि ये सब हरे पड़े हैं निमित्त मात्र हूँ मैं, तो वो ही बात अब चल रही है सर।
तो और कौन सी
संगम की तो सारी बातें चल
रही, जो बातें हैं वो सब इसी समय की बातें हैं, और कहा
ये मिल गए ना सर कि जो
शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो सब इसी समय की तो बातें हैं,
निश्चय और अनिश्चय की। वार्तालाप में बोला है
एक आदमी को तो पूरा बोल रहे हो, आप सुनते तो है क्या उधर से बोल रहे हैं पहले?
हाँ बोलो।
बाबा ने बोला है कि पांडवों का युद्ध माया के साथ है, कौरवों का युद्ध तुम्हारे साथ नहीं है, कौरवों का युद्ध मुसलमानों के साथ है।
कौरव है उसका कौरव का अर्थ क्या हुआ? कौओं की तरह फालतू काव काव करते रहना, अंदर से गंध खाते रहना, उनका विश्व उनका ये अंदर से लक्ष्य थोड़े ही है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, हमको ब्राह्मण से देवता बनना है, नहीं तो उनकी हमारे से भी लड़ाई है।
तुम्हारे साथ
नहीं, हमारे साथ भी है,
मुसलमानों
के साथ भी है, वो आपस में भी लड़ पड़ेंगे। हिंदुस्तान में कौरव भी है, बाहर की दुनिया में उनका राज्य है अभी कौरवों का, और यहाँ पे मुसलमान भी घुसे हुए, दोनों तरफ से हिंदुस्तान को घेरा हुआ, उधर बांग्लादेश में घेरा हुआ है, उधर पाकिस्तान में घेरा हुआ है, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी?
वार्तालाप में बोला
है। अभी ये माता बोल रही थी, उसको तो बोल लेने दो, नंबर वार काम करो ना। हाँ बोलो।
बाबा ने बोला था एक मंदिर में
कहो वो माता बोल रहे उनको भी बोल रहे क्या बोलने जा रहे हो?
एक वार्तालाप में बोला कि प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। प्रश्न ही मतलब समस्या का स्वरूप है, तो क्या सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए?
ये भी तो बताया है द्वैतवाणी में कि पूछने के भी दो अंदर से राज होते हैं। एक होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करना और एक होता है विरोध करना। जो विरोध करने वाले हैं वो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाए गए हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो उन्होंने मुंह पकड़ा, तुमने ऐसे कहा, मुरली में ऐसे कहा, ग्लैनफिशर में ऐसे कहा, आप ऐसे कह रहे हो, ये कैसे साबित हुआ?
तो
मुंह पकड़ना हो गया।
और
कोई ऐसे होते हैं कि समझाने गए कहीं और किसी ने प्रश्न कर दिया, नहीं समझा सके, तो अगर वो पूछते हैं कि बाबा इसका क्या मतलब, हम तो जवाब सही नहीं दे पाए या जो दिया जवाब उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो सही जवाब वो बता दो। तो भाव देखा जाता है हर काम में, भाव क्या है, भाव विरोध करने का है या भाव सहयोग करने का है? विरोध करने का है तो प्रसन्नचित्त हो गया।
फिर बाबा ने कहा कि सभा में 5% लोग ही प्रश्न करते हैं,
इसका
मतलब प्रश्न
5% भी नहीं रह गए, अब तो और कम हो गए।
तो
जहाँ कहीं भी वार्तालाप होता है बस वो दो तीन ऐसे रह गए जो बार 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 उनके प्रश्न खत्म ही नहीं है। जैसे राम रावण युद्ध दिखाया गया तो वो राम बार बार बाण मारते हैं, सर कट जाता है फिर आ जाता है, फिर सर कट जाता है फिर आ जाता है, वो बार बार सर काटते जाए, बार बार सर नहीं नहीं वो उगते चले जाते हैं। तो बाद में कहा नाभिकुंड पीयूष वह जाके, नाभिकुंड में अमृत भरा हुआ है इसको फोड़ दो।
इसका मतलब जो प्रश्न नहीं पूछ रहे उनको कोई समस्या नहीं है, वो आत्मिक स्टेज में है।
ये भी नहीं है, लेकिन ये इतना साबित होता है कि उनको प्रश्न उठता नहीं है विरोध में कोई, अगर उठता भी है तो जिज्ञासा शांत करने के लिए। जिज्ञासा शांत हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, उन्हें कोई अंदर से तलखीलापन आने वाला नहीं
है। बाबा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो प्रश्न तो स्वाभाविक
है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो मनन चिंतन जो है वो स्वचिंतन का होगा या परचिंतन का होगा?
ज्ञान से संबंधित।
हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन एक तो होता है स्वचिंतन और एक होता है परचिंतन, तो कौन सा चिंतन है? तो स्वचिंतन करने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है। और मुरली में तो ये बोला है कि बाप आकर खुद ही तुमको सारी बातें बताते हैं, पहले तुम कुछ जानते थे क्या? बेसिक नॉलेज में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? अच्छा, एडवांस में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? नहीं जानते थे, बाप ने तो सब कुछ बताया, अब तुम प्रश्न क्या पूछेंगे?
बाबा अगर समय देते हैं आधा घंटा एक घंटा की वार्तालाप करो, बातचीत करो, अगर सभी इसी स्टेज में बैठ जाएं कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो वार्तालाप सीधी कैसे बात की?
ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर सब बैठ जाए कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो ये हठ योग हुआ या सहज योग हुआ? ये तो हठयोग है, अंदर से प्रश्न आ रहा है तुम बाहर से नहीं पूछोगे, अंदर से आता रहेगा, अंदर से घुमड़ता रहेगा और ज्यादा बुद्धि खराब करेगा।
पूछना तो चाहिए ना,
कौन मना करता है?
फिर यही सवाल आता है कि प्रश्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं।
मना वो करे जिसको अंदर से डर हो, पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ दिया, जवाब दे पाए न दे पाए। वो गुरु लोग अपनी सभा में किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई किताबों का रटा हुआ ज्ञान थोड़े, तो बाप का दिया हुआ ज्ञान है। कितनी भी बाल में से खाल निकालो, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। घंटा तो हो गए। कुछ और पूछना करना रह गया, और कुछ ऐसा कुछ? बहुत जरूर किया है तो पूछ लेते हैं।
जगदम्बा है ना?
जगदम्बा। हाँ जी हाँ जी।
ये नारायण धर्म में माता है, आपके धर्म में माता, तो इनके धर्म में जगदम्बा का मतलब बहुत से तो ये बताते हैं कि वो पवित्रता के लिए उसका दिन उनकी हत्या कर दी। तो
इसका क्या पक्का प्रूफ क्या है कि वो जगदम्बा की आत्मा है?
ये बाबा जी हमको नहीं पता।
तो फिर जब पता नहीं तो क्यों?
पहले
कोर्स में जो बताते हैं तो कोर्स बताने वाले अनेक प्रकार के लोग हैं, बिना प्रूफ को प्रमाण के कैसे कहा जा सकता है कि वो जगदम्बा वाली आत्मा? बाबा जी ये कहा कि बहुत कुछ बन पाए।
तीनों
में प्रवेश करता हूँ ऐसे तो नहीं बोला मैं, ऐसी कोई मूल्य नहीं बोला कि मैं तीनों में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते, ये बोला था। तीनों में प्रवेश करता हूँ लेकिन बोलता हूँ ये कोई जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट बजावेंगे, जो प्रैक्टिकल पार्टी होगी उसके द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजावेंगे या मुख से सिर्फ सुनावेंगे?
एक में रख दो,
एक है प्लानिंग पार्टी
जो है रहने देना और आपका,
एक है प्रैक्टिकल पार्टी और एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी। इंस्पिरेट करने वाला का काम है इंस्पिरेट करना, सुनाने वाले का काम सुनाना, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले का काम प्रैक्टिकल पार्ट।